ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி. यह भट्टी है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा की. तो आज का अपना विषय सब्जेक्ट है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा. तो आज हम इस बात पर सोचेंगे कि यह संस्कृत शब्द स्मृति लब्धा ये क्या है. यह शब्द सर्वशास्त्र शिरोमणि शास्त्र श्रीमद् भगवद् गीता का 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक है और इस अंतिम श्लोक को अर्जुन उवाच है. सारी गीता के अंदर भगवान और अर्जुन के बीच का संवाद है और अंत में उस संवाद की जो रिजल्ट है वह बताई गई है इस एक श्लोक के अंदर. तो पहले हम इस शब्द का अर्थ भाव और परिभाषा को समझ लें, तब हम आगे उससे संबंधित जो भी बातें हैं उसको समझ पाएंगे. हम जब भी नए नए बाबा के राजयोगा सेवा केंद्र पर या फिर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आते हैं तो हमें 7 दिन का कोर्स कराया जाता है और मेजॉरिटी 98% सभी यहाँ पर ऐसे ही भाई बहने बैठे होंगे जिन्होंने 7 दिन का कोर्स किया, जिस कोर्स के द्वारा ही हम बच्चों ने ये समझा आत्मा क्या, परमात्मा क्या, सृष्टि चक्र क्या, पूर्व जन्म, ये जन्म, पुनर्जन्म और कितने जन्मों का चक्र, कर्म की गुह्य गति, श्रेष्ठ कर्म, कनिष्ठ कर्म और उनसे प्राप्त फलश्रुति और फिर इस सारे युगों के अंदर कितने जन्म और कैसे आत्माओं का नंबरवार आना और इस सृष्टि रूपी रंग मंच पर अपना पार्ट प्ले करना और फिर वापस घर जाने की आस और फिर सुख दुख के चक्र में चलकर दुखी होने पर प्रभु को फिर से पुकारना और फिर 4 युगों से मिश्रित यह एक कल्प और कैसे कल्प के संगम युग पर परमपिता परमात्मा का धरती पर पधारना और फिर से वही चक्र रिपीट होता है और परमपिता परमात्मा आकर के हम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं तो मीठे मीठे परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव बाबा जो कि सत्य गीता ज्ञान दाता है, यानी गीता का ज्ञान आकर के नहीं दिया, लेकिन पिता परमात्मा ने जो हमें ज्ञान सुनाया, सत्य ज्ञान जो कोई भी मनुष्य आत्मा सुना नहीं सकती, वह अनादि आदि और अंत का सत्य ज्ञान बाबा ने आकर के सुनाया। शिव भगवान उवाच हम बच्चों के प्रति, और फिर उस ज्ञान का जो गायन चला गीत के रूप में, गायन माना गीत के रूप में जो महिमा चली उसको नाम दिया गया गीता। तो श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान दाता स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा, तो उन्होंने आकर के हम बच्चों को ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा दी, जो हम आज भी ले रहे हैं, और उसी के आधार पर उनकी ही श्री मत पर हम सभी बच्चे चल रहे हैं। तो आज हम मोह का भी सप्ताह का कोर्स सुनेंगे। अब ये सागर में, सागर को गागर में समाने की बात है, समय तो बहुत थोड़ा है, क्योंकि बाबा के एक एक महावाक्य पर एक एक शास्त्र बन सकता है, इतनी उसके अंदर गोपनीय बातें, गुह्य बातें, सत्य बातें और प्रैक्टिकल व्यवहारिक ज्ञान जिसको कहते हैं वो उसके अंदर समाया हुआ है। तो आज हम कोशिश करेंगे, हम सभी उड़ने वाली बाबा की चिड़ियाएं क्या करेंगे, सागर को हप करने की कोशिश करेंगे और सागर को गागर में समाएंगे, तो उसमें से एक बूंद को हम अपनी गागर में समाने की कोशिश करेंगे, एक बूंद वो भी सागर के समान। तो एक ही शब्द को हम उठा रहे हैं और वो शब्द है निर्मोही बन, नष्टो मोहा बन, और अशरीरी स्थिति के साथ अशरीरी पिता परमात्मा जो विचित्र है, जिसका कोई चित्र नहीं, उनकी याद में स्थित होना। तो पहले हम सुनेंगे मोह की परिभाषा, मोह क्या है। अशरीरी से देही अभिमानी स्थिति से आत्म स्वरूप से अपनी अनादि स्वरूप की स्थिति से नीचे आना, अर्थात देह में आना, देह अभिमान में आना, चित्र जो हमारा था नहीं, चित्र में प्रवेश करना, और चित्र में प्रवेश करने के पश्चात चित्र को अपना स्वरूप समझना, और फिर उस चित्र के साथ जितने भी चित्रधारी यानी साकार देहधारी शरीरधारी जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, उन्हों के साथ हमारा मन वचन कर्म से संबंध का जुटना। सिर्फ संबंध नहीं जुटता, संबंध के साथ साथ स्नेह भी होता, परंतु स्नेह का विकृत स्वरूप वो है मोह। शॉर्ट परिभाषा, अपनी असली स्थिति स्वकर्म स्वधर्म स्वपिता, स्वघर, स्वगुण, स्वशक्तियां, जो हमारे मुख्य सात गुण हैं, उन सभी से नीचे की स्थिति में आ जाना, उससे विपरीत स्थिति को पाना, उसको कहते हैं मोह। ईश्वर से स्नेह हटकर, विचित्र से स्नेह हटकर चित्र में स्नेह का पड़ना, परंतु वह स्नेह स्नेह का रूप नहीं, यानी जो रूहानी आध्यात्मिक रूप होता है वो रूप न रहकर जब वो दैहिक रूप धारण करता है, रूहानी रूप का त्याग कर आध्यात्मिक रूप का त्याग कर जब दैहिक में वो अटकता है, वो है मोह। अब स्नेह और मोह के बीच में बड़ी पतली भेद रेखा है, इतनी सूक्ष्म भेद रेखा है कि उसको समझने में बड़े बड़े विद्वान भी धोखा खा जाते हैं, और उस धोखे का सबसे बड़ा सबूत यही है कि सतगुरु के स्थान पर देहधारी मनुष्य जब प्रभु के उच्चारे हुए ज्ञान को किसी शास्त्र के रूप में हमें सुनाते हैं, बताते हैं या समझाते हैं, तो उसको ही सतगुरु मान लेना, जबकि वो है नहीं। उसी प्रकार हमारा रूहानी स्नेह एक ही कायदा कहता है कि परमपिता परमात्मा है मेरे सब कुछ, माता पिता, शिक्षक, सखा, बंधु, भाई बहन, प्रेमी, जो भी कहना हो, मित्र, और उससे ही हमारे सर्व संबंधों का स्नेह हो, संबंध हो, उनसे ही हम संबंधों के सुख लें और प्राप्तियां करें। मेरे ख्याल से मोह की परिभाषा अभी मैं इतना ही बताकर मैं आगे बढ़ूंगी, क्योंकि मुझे 7 दिन की 7 बातें आपको जरूर बतानी है। डिटेल तो बहुत ही है, मैंने बताया, एक एक बात को खोलने बैठूं तो मुझे भी शायद 7 दिन तो जरूर चाहिए, इतना यह गुह्य ज्ञान है। फिर हम जानेंगे इस मोह का कारण, जो कारण भी मैंने परिभाषा में थोड़ा इशारे में बता ही दिया कि मोह का कारण देह में जब आते हैं तो संग मिलता है देह का, प्रभु का भी संग होता है परंतु देह का भी उसे संग मिलता है, और देह के साथ साथ ये देह बनी है प्रकृति के 5 तत्वों की, तो उसे 5 प्रकृति के तत्वों का भी संग मिलता है, फिर उस प्रकृति के 5 तत्वों से बनी हुई जो सृष्टि है, उस सृष्टि के अंदर जो भी वनस्पति सृष्टि है, जो भी पशु सृष्टि है, पक्षी सृष्टि है, फल फूल और पत्तों की जो बहार है, जल सृष्टि है, जल के अंदर जीवित जो भी जल के पशु पक्षी हैं, इन सभी का उसमें समाविष्ट, वो सभी समाविष्ट होते हैं, वो सब उसमें समाये हुए हैं, तो इन सभी का हमको संग मिलता है, और ये शरीर भी इन 5 तत्वों से मिला जुला एक पुतला बनता है, तो इन सभी के संग में हम जब आते हैं इस सृष्टि पर, शरीर में आत्मा प्रवेश करती है, तो धीरे धीरे ये जो चित्र और चित्र की दुनिया, साकार सृष्टि प्रकृति या ये प्रकृति से बनी दुनिया, जब धीरे धीरे हमारे ऊपर उनका संग हावी होने लगता है, उसका प्रभाव अधिक से अधिक होने लगता है और धीरे 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 वो आध्यात्मिक प्रभु का संग, हमारे प्रभु के धाम का, स्वयं के स्वघर का, अपने असली घर का और हमारे असली जो भी साथ हमारे साथ संलग्न बातें हैं, उन सभी का रंग थोड़ा थोड़ा ढकने लगता है, खत्म नहीं होता है, उसके ऊपर ये रंग चढ़ने लगता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि हम पूर्ण रीति से इस चित्र से जुड़ी हुई विकृति, ये विस्मृति जो है वह भी एक प्रकार की विकृति है। हम जो अपने स्व से, स्व के कर्म धर्म फर्ज कर्तव्य, इससे जो हम वंचित होते जाते हैं, तो हमारे अंदर विकृति प्रवेश करती है। विकृति माना विषय विकार प्रवेश करते हैं। देही अभिमानी की जगह देह अभिमान में आते, शांति की जगह क्रोध में आते, संतुष्टता की जगह हम लोभ में आने लगते, निर्मोही होने के जगह पर हम मोह युक्त होते, निर्माण और नम्र चित्तता की जगह पर हम अपने में अहंकारी बनते चले जाते, देह अभिमान में हम आते जाते। तो इस प्रकार हमारे ऊपर नंबर वार परसेंटेज में सभी के ऊपर इस संग का रंग लगता है और इतना रंग चढ़ता है कि हमारे सर्व संबंध स्नेह, हमारे कार्य कर्तव्य, चाहे व्यक्तिगत चाहे पारिवारिक चाहे सामाजिक चाहे राजकीय चाहे राष्ट्रीय चाहे वैश्विक, सभी के ऊपर मुझ आत्मा की इस पराधीनता का, इस गुलामी का, इस परतंत्रता का, इस कुसंग का रंग चढ़ने लगता है और इतना चढ़ता है कि मैं स्वयं आत्मा तो दुखी होती हूं लेकिन सर्व आत्माएं दुखी और त्रस्त हाय हाय करने लगती हैं और प्रभु को अति दिल से पुकारती हैं और प्रभु को उनका वायदा याद कराती है। कितनी विचित्र बात है, जो हमें स्मृति दिलाए उसको हम स्मृति दिलाने लगते हैं। कलयुग का प्रभाव, बेटा बाप बनता है। बहुत बातें हैं कलयुग की, मैं इतना ही बताती हूँ, आप समझ जाएंगे। तो हम प्रभु को स्मृति दिलाते, क्या दिलाते, आपने वायदा किया था कि जब जब तुम्हारे ऊपर भीड़ पड़ेगी मैं आऊंगा और तुमको मुक्त करूंगा। तो प्रभु अपना वायदा निभाइए, हमने नहीं निभाया, लेकिन उनको कहते हैं हम कि आप अपना वायदा आकर के निभाइए। बाबा कहते मैं बहुत आज्ञाकारी बच्चा हूं, सबसे आज्ञाकारी मैं हूं। उसकी आज्ञाकारिता की बात करूंगी मैं कभी, तो बहुत रमणीक बातें हैं उसके अंदर। अमृत वेले से क्या, लेकिन उसकी पूर्व तैयारी रात्रि, तब से लेकर हम बाबा से काम कराते रहते हैं जो रात्रि सोने तक, बाबा मुझे उठाना, बाबा मेरा ये काम करना, वो करना, ऐसे करना, वैसे करना, ये दुखी हूँ, वैसे दुखी हूँ, ये समस्या, वो समस्या, उसका ताला खोलो, उसका ताला खोलो, क्या क्या हम बाबा को नहीं कहते। भक्ति मार्ग में भी बहुत कहा, अभी भी बहुत कहते रहते हैं। तो ये हमारी स्थिति जब बन जाती है, दुखी होते हैं, प्रभु को पुकारा और प्रभु सृष्टि पर आते हैं और हमें आकर के सत्य ज्ञान देते हैं। तो जैसे हमें आत्मा का परिचय दिया और आत्मा के पिता परमात्मा का परिचय दिया और भी सारी कर्मों की ज्ञान गति समझाई, तो साथ साथ हमको माया का भी पूर्ण परिचय देते हैं बाबा कि ये माया क्या है, और माया को भी जानना अति आवश्यक है। जितना बाबा को जानना अति आवश्यक है, ऐसे माया को भी जानना अति आवश्यक है, क्योंकि हम माया के मुरीद बने हैं। जैसे माया कहती है वैसे चलने लगे, आत्मा अपनी सूक्ष्म कर्म इंद्रियां मन बुद्धि संस्कारों के साथ और शरीर की पंचेंद्रियां वह भी इस माया के वशीभूत चलने लगी। यानी आत्मा और शरीर दोनों ही विषयासक्त होकर विषय विकारों की मत पर, विकारी मत पर, आसुरी मत पर चलने लगे। इसीलिए कहा गया मनुष्य जिस चित्र का मन विषयों पर अधीन है, उसके अधीन है, क्योंकि मन पहले प्रोडक्ट करता है विचारों का, संकल्पों का, वहां से शुरुआत होती है और विषयों के विचारों से फिर आगे बुद्धि भी वैसे, संस्कार ऐसे, स्वभाव ऐसे, संग ऐसे, रंग ऐसा, और उसकी प्राप्ति अप्राप्ति भी वैसी। तो हम आत्मा सृष्टि पर आए तो देवात्मा, देवात्मा के बाद द्वापर युग से हो गई मनुष्य आत्मा, और फिर जब कलयुग का अंत आया तो हम बन गई पतित आत्मा, और जब पतित आत्मा आसुरी आत्मा बनी, माया की मुरीद आत्मा बन गई, तो हम प्रभु को पुकारा कि फिर से हमें आकर के क्या करो, पतित से पावन बनाओ। तो प्रभु ने ज्ञान देना शुरू किया, कहा क्या कारण बना जो आप प्रभु को भूले, खुद को भूले, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजा रहे हो, ये भूले, अपने घर को भूले, धर्म कर्म कर्तव्य सबको भूले। तो बाबा ने ज्ञान दिया। जब ज्ञान पूर्ण रीति से मिल जाता है तब अंत में क्या होता है, हमें जो निवारण बाबा के द्वारा श्रीमत के द्वारा मिलता रहा, हम उसको अपनाते जा रहे हैं, और उससे जो भी प्राप्तियां होती जा रही हैं वो भी हम सभी अनुभव करते जा रहे हैं। प्राप्ति होने के पश्चात अप्राप्तियों का दुख, विकर्म या कनिष्ठ या पाप कर्म करने का पश्चाताप, ये सब जब प्रभु सुनाते हैं तो सुनते सुनते हम इन सभी परिस्थितियों से गुजरते हैं। क्योंकि जब तक हमने सुख दुख नहीं समझे, श्रेष्ठ कर्म कनिष्ठ कर्म नहीं समझे, हम पश्चाताप नहीं करेंगे। समझने से भी ज्यादा महसूस होना जरूरी है। ज्ञान से हमें समझ मिलती है, जानकारी मिलती है, परंतु महसूस करना ये हमें कौन कराता है, बुद्धि कराती है। इसीलिए बाबा ने राजयोग सिखाकर बुद्धि को एकाग्र करना सिखलाया, क्योंकि बुद्धि जब एकाग्र चित्त होकर और बाबा को याद करेगी तो वो मन को भी कंट्रोल करेगी, वरना बुद्धि के ऊपर मन हावी है। मन जैसे कहता है वैसे बुद्धि करती है, वर्तमान ये स्थिति है। पर बाबा का बनने के बाद बुद्धि हमारी शार्प हो जाती है, क्योंकि ये बुद्धि नेत्र है, प्रभु के द्वारा दिया हुआ दिव्य ज्ञान के ये नेत्र हैं जो हमें प्राप्त होते हैं, जिससे हमें स्पष्ट सब दिखाई पड़ता है। इसीलिए निर्णय करने में गफलत हो नहीं सकती है। फिर भी कभी माया की धूल के कारण या माया के किसी कारण आंखों में धुंधलापन आ जाता है तो निर्णय शक्ति कमजोर होती है। तो बाबा कहते श्रीमत लो, ताकि गलत कदम ना उठे। तो निर्णय शक्ति इतनी पावरफुल हो जाती है कि हम यथार्थ बताते हैं, सफेद को सफेदी कहेंगे, काले को काला ही कहेंगे। हम ये गलती नहीं करेंगे कि ये लाल गुलाब है, ये सफेद गुलाब है, ये हरे पत्ते हैं। करेंगे गलती? नहीं करेंगे। तो निर्णय शक्ति भी हमारी पावरफुल हो जाती है। सिर्फ निर्णय शक्ति नहीं, सारी शक्तियों की ऊर्जाएं उठ करके बाहर आती हैं। सारी शक्तियां बाबा हमें राजयोग सिखाकर हमें भरपूर करते हैं, और उसका उपयोग जो जितना करता है उसको उतनी सर्व सिद्धियां, सर्व प्राप्तियां सिद्धि के रूप में प्राप्त होती है। गीता कोई साधारण ज्ञान नहीं है, ये गुह्य ज्ञान है। मुरली जो बाबा की रोज चलती है, ये सत्य ज्ञान की मुरली है, जिसके ऊपर द्वापर युग से लेकर अनेका अनेक शास्त्र लिखे गए, फिर भी उस सत्यता की गहराई में कोई यथार्थ पहुंच नहीं पाया। इसलिए प्रभु को स्वयं आके ज्ञान देना पड़ा, राजयोग सिखाना पड़ा, जिससे हमें शक्तियां प्राप्त हो। और भाग्य विधाता ने सत्य ज्ञान सुनाकर हमारा भाग्य ही चमका दिया। भगवान से वायदा, भगवान को वायदा क्या याद कराएं? भगवान ने खुद हमें अपने वायदे याद कराए, और हम बच्चों को अपना ब्रह्मा बाबा के द्वारा बनाकर, जो अर्जुन की आत्मा है, जो ही परम पद को प्राप्त करके श्री कृष्ण बनती है, उसके द्वारा यह ज्ञान सुनाकर राजयोग द्वारा शक्तियां प्रदान कर, श्रीमत देकर, सही धारणाओं में चलाकर, और नित्य अपनी पढ़ाई, स्मृति और शक्तियों के संग में रखकर, और समय का मूल्य समझाकर हमें सत्य यथार्थ पुरुषार्थ कराया। कैसे? निश्चय बिठाकर। और निश्चय जब बैठा कि यह सत्य ज्ञान स्वयं परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा दे रहे हैं, जिसने उनकी हर बातों में विश्वास किया, निश्चय किया, वो विजयंती हुए। जो विजयंती आज यहाँ सभा के अंदर विराजमान है, और हम सदैव विजयंती रहेंगे। अब समय चूंकि कम है, सिर्फ 5-6 मिनट मेरी बची है, तो प्रभु ने आकर के हमें एकदम अंधकार से रोशनी में लाया। हम अंधे थे, ये नेत्र खुले थे, लेकिन जो दिव्य नेत्र हमारा खुला होना चाहिए वो बंद था, जिससे आत्मा अपने को देखे, परमात्मा को देखे, सृष्टि चक्र के 84 जन्म के चक्र को, माना भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य, तीनों कालों को स्पष्ट देखे। वो नेत्र बंद हो चुका था, बाबा ने खोल दिया, हम स्पष्ट देख रहे हैं, स्पष्ट समझ रहे हैं, स्पष्ट महसूस कर रहे हैं। तो इतना सारा हमको बाबा ने ज्ञान सुनाया। कई प्रकार से हम संशय में आते रहे, कभी निश्चय, कभी संशय, कभी क्या, कभी क्यों, कभी कैसे, बाबा ऐसे नहीं वैसे, ऐसे करेंगे तो ऐसा कैसे होगा, ये बात ऐसी ऐसी क्यों, वैसी क्यों, कितने प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर हम सभी ने अपने इस ब्राह्मण जीवन में, जीवन में मन ही मन के अंदर किए होंगे। इसका भाग्य ऐसा क्यों, मेरा भाग्य ऐसा क्यों, इसको इतनी फल प्राप्ति क्यों, मुझे इतनी फल प्राप्ति क्यों नहीं, इसके स्वभाव में ये विशेषता क्यों, मेरे में ये विशेषता क्यों नहीं, ये क्यों आगे, मैं क्यों पीछे। तो कई प्रकार के प्रश्नों में उलझे, फिर श्रीमत पर सुलझे। हर वक्त ज्ञान मुरली आगे आई, जिस दिन जिस बात से हम अटके, लटके, मूंजे, उलझे, मुरली का हेडिंग, मुरली के शीर्षक पर वही बात जिसमें हमारा समाधान। आज भी मुरली के शीर्षक में यही बात थी, तुम सभी हो साकार चित्र, लेकिन एक बाप ही है विचित्र। अतः हमें बाप समान बनना है तो हमें भी विचित्र अशरीरी बाप के जैसा अशरीरी बनना है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा विघ्न वो कौन सा है, देह और देह के संबंधों का, और उन संबंधों में अभी अंदर में सूक्ष्म मनसा, मन, वचन या आदतें, संस्कार, वो अटके हुए हैं, पूरे अटके हुए नहीं हैं, लेकिन हम खुद ही जाकर के वो फांसी का फंदा गले में पहनते हैं, फिर उतारते हैं, फिर पहनते हैं, फिर उतारते हैं। वो है देह की स्मृति और देहधारियों की स्मृति, और इस देह की जो दुनिया है जिसको हम तमो प्रधान, पुरानी, कलयुगी, अंतिम चरण में गुजरने वाली कलयुगी, तमो प्रधान, विषयी, विकारी, दुखी, अशांत, पतित, पापों की दुनिया है। तो इस पुरानी दुनिया के जो भी आकर्षण है, सब पुराने आकर्षण है, आर्टिफिशियल आकर्षण है, उन सभी में बुद्धि जो है बीच बीच में, जैसे कोई चंचल बच्चा माता पिता का हाथ छुड़ाकर घड़ी घड़ी भागता है अंगुली छुड़ाकर, ऐसे हमारी बुद्धि भी भागती है बाबा की स्मृति की अंगुली छुड़ाकर या बाबा के साथ का हाथ छुड़ाकर और हम बाबा को भूलते हैं, विस्मृति में आ जाते हैं, तो ये स्मृति विस्मृति का खेल ही यह एक विचित्र ड्रामा है जिसमें हम विचित्र आत्माएं चित्र बनकर और पार्ट प्ले करती हैं। अंत में जब ड्रामा पूरा होता है तो घर जाने के लिए हम अपने घर को भूले हुए हैं, तो फिर बाबा आते हैं, विचित्र आता है, हम सभी बच्चों को फिर से अपने घर ले जाने के लिए। परंतु उसके लिए क्या जरूरी हो जाता है कि हम इस स्टेज पर पार्ट प्ले करते करते मुझे जो रूप मिला, रंग मिला, ड्रेस मिली, जो पार्ट प्ले करने के लिए मुझे कहा गया, जो रोल मिला, पहले मुझे इन सभी बातों से प्लेन होना पड़े। ये स्टेज को कोई मैं अपना घर तो नहीं कहूंगी, ये स्टेज है, पार्ट प्ले करने का स्टेज है। यहां मैंने जो राजा की ड्रेस पहनकर मेरा रोल किया, यही ड्रेस पहन के मैं दुनिया में घूम नहीं सकती हूं। मुझे ये ड्रेस यहां ही उतार कर असली ड्रेस पहननी पड़े। मैं चाहूं कि यही स्टेज मेरा घर बनाकर मैं इसी स्टेज पर ही सो जाऊं, यहीं खाना पकाऊं, सोऊं, खाऊं, पीऊं, सब धंधे यहीं करूं। कर सकती हूं? नहीं। लेकिन हम लोगों ने ऐसा किया। फिर इस स्टेज और रंगमंच के ऊपर जितनी भी उसको सुशोभित करने वाली चीजें हैं, इस सृष्टि को चलाने में और चलने में जो भी पदार्थ हैं, फिर जो भी इस सृष्टि पर मनुष्य सृष्टि, पशु सृष्टि या जो भी जीव सृष्टि यहां पर रहती है अपनी देह को धारण कर, उनके जो भी खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, उनके पहनने के वस्त्र तक, परिधान, परिवेश तक, सब में हमने आसक्त होकर आसक्ति बिठाई। हम इतने आकर्षित हुए उनसे कि वह हमारा स्वभाव, संस्कार और आदत बन गई। तो ये पंचेंद्रियां और हमारी तीन सूक्ष्म कर्म इंद्रियां, ये सभी मिलकर इन आकर्षणों से आकर्षित हुए। एक भी कर्मेंद्रिय सूक्ष्म चाहे स्थूल उससे मुक्त नहीं। तो मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता, उसने हमारी ये, जैसे कोई कंगाल होता है, मोहताज, गुलाम, पशु समान, जिसकी हालत जो हर कर्मेंद्रियों से भोगना भोगते रहे, जिनके ऊपर रहम पड़ता रहे, करुणा जागे, मैं कह नहीं सकती हूं कैसी हालत, जो स्वयं को बचाना चाहता है पर बचा नहीं पाता, डूबना नहीं चाहता पर तैरना नहीं आता तो किनारे जा नहीं पाता, उसको किनारे जाना है। इन सब बातों को लेके हमने इतना दर्द से पुकारा उसको, तब उसने भी कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, विशेष भारत देश में, क्योंकि प्रभु की जन्मभूमि है, हम बच्चों की भी जन्मभूमि है, प्रभु ने भारत में ही, पूरा विश्व भारत था, स्वर्ग स्थापन किया था। प्रभु की संकल्पना का प्रथम संकल्प स्वर्गीय सृष्टि, देवी देवताओं की सृष्टि वो प्रभु ने यहां रची। तो इसीलिए जब जब धर्म की ग्लानी, हम बच्चों ने अपने धर्म कर्म को भुलाया, स्वयं अपने स्वमान को भुलाकर अपमानित खुद से हुए, अन्यों से भी होते रहे, यहां तक कि माया हमारा खूब एडवांटेज उठाती रही और हमें अपमानित करती रही और हम उसे स्वमान समझ कर चलते रहे। ऐसी जब बच्चों की लाचार, बंधन युक्त ऐसी कड़िया स्थिति परिस्थिति देखी बाबा ने, तो कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब ऐसी भारत की ग्लानी किसके द्वारा हुई? हम बच्चों के द्वारा। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। तभी मैं इन सभी देह और देह के धर्म और उनसे संबंधित जो भी धर्म कर्म सृष्टि आकर्षण जो कुछ भी है, सभी का विनाश कर सत धर्म की स्थापना मैं करता हूं। उसके लिए तदात्मानम सृजाम्यहम्, उसके लिए मैं अवतरित होता हूं। फिर से मेरी संकल्पना का प्रथम संकल्प की जो सृष्टि स्वर्गीय सृष्टि थी वो स्थापन करने आता हूं। तो ये जो उसमें विघ्न पड़ रहा है स्मृति का, देह और देहधारी तथा देह की दुनिया, देह के आकर्षण, दैहिक स्वभाव, दैहिक संस्कार, इन सब से पहले मैं मुक्त करता हूं जो है मोह, जो मुझे इस देह से भी निकलने नहीं देता, भय उत्पन्न कर रहा है। सबसे बड़ा भय मुझे कौन सा है? मृत्यु का। सब जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता, तंग भी होते हैं सृष्टि से, कहते भी हैं हमारे जीने योग्य नहीं है, मर जाना अच्छा, लेकिन जब सचमुच मृत्यु सामने आती है तो जीने की तमन्ना जाग उठती है, वो रोकती है उसको। तो अर्जुन को, यानी हम सभी बच्चों को, अर्जुन सम हम सभी बच्चों को आदि से लेकर ज्ञान सुना रहे हैं नष्टो मोहा बनने के लिए, अशरीरीपन के अभ्यास की बात, देही अभिमानी बनने की बात, निश्चय बुद्धि विजयंती बनने की बात, पतित से पावन बनने की युक्तियां, मुक्ति जीवन मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, जैसे जनक मिसल हमें बनाने का बाबा का यत्न, ये सब आज तक बाबा कर रहे हैं। अब हमें एक काम करना बाकी है, वो काम कौन सा है? बाबा ने हमें विश्वास दिलाया, निश्चय बुद्धि बनाया, अब हमें बाबा को निश्चय बुद्धि बनाना है अपनी तरफ से। किस बात में? जैसे अंत में बताया हुआ है, आखिर अर्जुन ने सभी बातें समझी, सारे प्रश्नों के उत्तर मिले, सर्व समस्या का समाधान हुआ, सर्व प्रश्नों के उत्तर मिले, जो भी हथियार उसने डर के मारे नीचे रख दिए थे अपने सारे मित्र संबंधियों को देखते हुए कि युद्ध में सामने सेनापति के रूप में कौन है, जिससे अर्जुन हिम्मत हारा, सब उनके संबंधी और उनके गुरु भीष्म पितामह, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य सभी गुरु, दादा सब उनके मित्र संबंधी। अब इन सभी के सभी को मारने का प्रश्न आया कि इनको नष्ट करो, और वो कांप उठा, ये तो सब मेरे हैं, मेरा है। जिसने कहा मेरा वो मरा, जिसने बाबा को कहा मेरा वो अमर भव का वरदानी बन चुका। सिर्फ वरदान लेता नहीं, अमर भव का वरदान दूसरों को देने के पात्र बन गया। तो अब हमें कहना है बाबा को, बाबा मैं अब निश्चय बुद्धि हूं, मेरी भी सारी समस्याएं टल गई, मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिले, मैं आपकी दुआ से, इस सत्य ज्ञान से, आपके द्वारा मुझे जो पाना था वो मैंने सब कुछ पाया, गुण पाए, शक्तियां पाई, सत्य ज्ञान पाया, मैंने अपना भाग्य बनाया। अब इस युद्ध में आपको याद करते करते अगर मैंने देह त्याग किया तो श्री भगवानुवाच, युद्ध करते करते अगर तूने शरीर त्याग किया तो तू परम पद को प्राप्त करेगा, अर्थात श्री लक्ष्मी नारायण पद को प्राप्त होगा, स्वर्ग को प्राप्त होगा। फिर बोलो, कौन नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, यानी अब मैं प्रभु एक तेरी याद में ही रहूंगा रहूंगी, बस मेरा तो बोलो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, मैं सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक आप को ही सर्व संबंध से, सर्व संबंध के स्नेह से याद करूंगा, अशरीरीपन का अभ्यास करूंगा, और मैं आपके हाथ में हाथ रखते हुए आपको ही मेरा जीवन साथी बनाकर समझकर चलूंगा। भले रहते हो युगल मूरत, वह तो रहना ही है, युगल मूरत रहते हुए भी दोनों के हाथ किसके हाथ में, बाबा के हाथ में। अब हमें एक दो की स्मृति में न रहकर दोनों को, एक दो को बाबा की स्मृति दिलाकर, दोनों को बाबा की याद में स्थित होकर, जीवन साथी कहते हो ना, तो साथ ही चलना है, तो साथ साथ बाबा के हम चलेंगे। और फिर कईयों की प्रीत बड़ी वंडरफुल है, प्रशंसनीय है, हम फिर से सतयुग में भी जोड़ी बनकर आए, हम ही जोड़ी बने। तो जो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनेगा कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, सर्व संबंध उससे जो जोड़ेगा, इशारे में बात समझ रहे हो मेरी, जो उनसे संबंध जोड़ेगा, और सर्व कर्मेंद्रियों से जो उसका स्नेह का संबंध का रस लेगा, और स्मृति में स्थित होगा, जब भी बाबा की याद में बैठे बैठे और अपने जीवन साथी के पास याद आए तो उसकी, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते स्वप्न में भी, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सब कुछ करूं। तो बस ये हुआ नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का अंतिम पाठ जिसका विश्वास हमको बाबा को दिलाना है और उसके लिए एक ही धारणा मजबूत करनी है स्मृति में पक्की, क्या मेरा तो बोलो सभी फिर से बोलो। अब ये मुख से बोला, अब अंदर भी बार बार पक्का करते रहना। अच्छा, ओम शांति।